पेज नंबर 33, चैप्टर नंबर 4।
नावल अमर बेल, तसनीफ उमेरा अहमद, सौती पेशकश लिटरेरिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, www.literaria.edu.pk।
वो परफ्यूम अपने कमरे में रखकर लाउंज में आ गई थी। वो पहले ही नानो के पास मौजूद था। नानो इसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। उमर ने कौन सा गिफ्ट दिया है तुम्हें, उन्होंने एलिजा को देखते ही पूछा था। वो मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ इनके पास सोफे पर बैठ गई। उन्होंने आपको बताया नहीं, उसने उमर की तरफ देखते हुए कहा था, जो दिलचस्पी से इसे देख रहा था। नहीं, वो कह रहा था ये एक सीक्रेट है, मगर एलिजा आपको बता सकती है, नानो ने बताया था। एलिजा ने एक बार फिर इसे देखा था। परफ्यूम दिया है, उसने आहिस्ता आवाज में बताया था। कौन सा परफ्यूम, नानो को तजस्सुस हुआ। शैनल 5। तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम? क्यों उमर, तुम्हें कैसे पता चला कि एलिजा को परफ्यूम सबसे ज्यादा पसंद है, नानो ने उमर से पूछा। उमर ने उसे देखा था, वो नजरें चुरा गई थी। हमें हर चीज का पता होता है, उसने एक जुमले में जवाब दिया था। अगली बार मैं अलीजे को जॉय दूंगा और इसके बाद इटर्निटी, चंद लम्हों के बाद उसने अपना प्रोग्राम बताया था। अलीजा ने इसे गौर से देखा, वो नानो को देख रहा था, इस तरफ मुतवज्जो नहीं था। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की थी क्या ये, और वो आगे नहीं सोच सकी थी। नानो ने इसे मुहातिब किया था। देख लो अलीजा, उमर ने कितनी लंबी प्लानिंग कर ली है, तुम्हें भी इसे कुछ देना चाहिए। वो नानो की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। मुझे क्या देना चाहिए, उसने उलझे हुए अंदाज में नानो से पूछा था। भाई ये तो तुम्हें सोचना चाहिए, उन्होंने अपना दामन छुड़ा लिया था। गिफ्ट हमेशा बड़ों से लेते हैं, छोटों से नहीं, और एलिजा मुझसे छोटी है, उमर ने बड़ी महारत से बात पलटी थी। हाँ, मुझे अगर कोई गिफ्ट देना ही चाहे तो ग्रैंडपा आप ही दे दें, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। क्या गिफ्ट चाहिए, नाना को भी एकदम दिलचस्पी महसूस हुई। कोई भी अच्छी चीज, अरमानी का सूट, डेनिम की जीन्स, क्रिश्चियन डी और की कड़ी, या फिर प्लेबॉय और लोमानी के परफ्यूम्स, उसने एक लंबी लिस्ट करवाई थी। इससे बेहतर नहीं कि मैं तुम्हें चेक काट के दे दूं? हाँ, ये ज्यादा बेहतर आइडिया है, आप बहुत इनोवेटिव हैं, उमर ने शरारती अंदाज में कहा था। अलीजा खामोशी से उनकी नोकझोंक सुनती रही थी। नानो बहुत संजीदा मिजाज थी, वो बहुत ज्यादा नहीं बोलती थी, मगर जब से उमर आया था सब कुछ बदल गया था। वो अब अक्सर कहका लगाने लगी थी। उमर बहुत बतूनी था और इसकी हिस्से मिजाज बहुत अच्छी थी। वो हर वक्त कोई ना कोई बात जरूर कर देता था जो उनको कहका लगाने पर मजबूर कर देती थी। नानो आम दिनों में सिर्फ जरूरत के वक्त ही बोलती थी, लेकिन जिन दिनों इनके बच्चों में से कोई इनके पास रहने आता तो फिर इन दिनों वो बहुत खुश फिरा करती थी। मगर उमर की आमद ने तो जैसे इस खुशी को दुबाला कर दिया था। किसी और के आने पर नानो और नाना में इतनी तब्दीलियां कभी नहीं आई थी जितनी उमर के आने पर आ गई थी। इस वक्त भी नानो का मूड ही देख रही थी। नानो अब उमर की बातों पर बेतहाशा हंस रही थी। वो उन्हें अपने किसी दोस्त का किस्सा सुना रहा था। लीजा का ध्यान कहीं और ही था। क्या मेरी किसी बात पर नानो इस तरह हंस सकती हैं, उसने सोचने की कोशिश की थी और मायूसी से गैर महसूस अंदाज में सर को झटक दिया था। नहीं, मेरी किसी बात पर तो ये कभी इस तरह नहीं हंस सकती, बल्कि ये तो मुझे भी यही कहती हैं कि मैं भी बुलंद आवाज में ना हंसूं, उसने सोचा था। क्या मैं कभी उमर की तरह, एक बार फिर उसने सोचने की कोशिश की थी। एक बार फिर उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया था। अलीजा, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, उमर ने उससे पूछा था। कितने, वो इसके सवाल पर कुछ हैरान हुई थी। चंद लम्हे तक उसने कुछ जवाब नहीं दिया। जल्दी गिनती करो और मुझे बताओ। उमर ने उसकी खामोशी से खुद ही नतीजा हज कर लिया था। क्या गिनती करूं? वो कुछ और हैरान हुई थी। भाई फ्रेंड्स और क्या, उमर ने कहा था। मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है। आई कांट बिलीव इट, लड़कियों की कम अज कम एक दोस्त तो नहीं हो सकती। उमर को इसकी बात पर यकीन नहीं आया था और एलिजा इसके चेहरे के तासुरात से झुंझला गई थी। यार लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सोशल होती हैं और ज़ाहिर है फिर फ्रेंड्स तो बनना ही होते हैं। उमर को फौरन ही इसकी हफकी का अंदाज़ा हो गया। उसने संभल कर एक लॉजिक पेश की। मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, उसने जैसे जताया था। बट यू शुड बी। क्यों ग्रैनी, मैं ठीक कह रहा हूँ? उमर ने बात करते करते दादू की तरफ देखा और वो एकदम चुप सी हो गई थी। नहीं उमर, लड़कियों के लिए ज़्यादा सोशल होना भी ठीक नहीं है। आजकल पता ही नहीं होता दूसरे लोग किस तरह के हों। नानू ने कुछ मुख्तात होकर तो जी पेश की। वट डू यू मीन? वो कुछ हैरान हो गया था। कुछ नहीं, बस वैसे ही। असल में अलीज़ा को ज़्यादा लोगों में मिक्सअप होना अच्छा नहीं लगता। नानू ने बात कुछ बदलने की कोशिश की थी। नहीं मगर एक दोस्त तो बहुत कम है। वो अब भी हैरान था। अलीज़ा को अपना आप इस तरह जेरे बहस लाना अच्छा नहीं लगा था। हर एक ही अपनी चॉइस होती है। मुझे लगता है कि मेरी बस एक ही फ्रेंड हो तो इसमें अजीब बात कौन सी है? इस पर अलीज़ा ने रूखे अंदाज में उमर से कहा था। वो इसकी बात के जवाब में कुछ कहते कहते रुक गया था। शायद वो इन तासरात से उसकी अंदरूनी कैफियत समझ गया था। अलीज़ा को अचानक अपने लहजे के खुरदरेपन का एहसास हुआ था। इसे कुछ नदामत सी महसूस हुई। अभी अभी उसने मुझे इतना कीमती परफ्यूम दिया है और मैं फिर भी उसके साथ इस तरह कर रही हूँ? इसने जैसे अपने आप को याद दहानी करवाने की कोशिश की थी। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, वो स्कूल से मेरी फ्रेंड है। इसके अलावा और कोई मुझे अच्छा नहीं लगा, बस इसीलिए यही मेरी एक फ्रेंड है। इसने जैसे उमर की तशवीह करने की कोशिश की। इस बार इसका लहजा कमज़ोर था। क्या आपके बहुत से फ्रेंड्स हैं? उसने सिर्फ मौजू बदलने के लिए पूछा था। हाँ मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे आज मैंने तुमको अपनी फ्रेंड बनाया है। उमर ने खुशगवार लहजे में इससे बातें करते हुए कहा था। फ्रेंड ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। मे बी, उसने इख्तलाफ करने की बजाय मुबहम अंदाज में जवाब दे दिया था। वो एक बार फिर खामोश हो गई थी। उमर ने अपनी घड़ी देखी और फिर खड़ा हो गया था। मुझे लाइब्रेरी जाना है, मैं 2-3 घंटों तक वापस आ जाऊँगा, उसने नानों को इतला दी थी। फिर वो लाउंज से निकल गया था। उसके जाने के कुछ देर बाद वो बाहर लॉन में निकल आई थी। लॉन के एक कोने में बैठकर वो कुछ देर पहले के वाकयात के बारे में सोचने लगी। वो उमर के बारे में कोई हतमी अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। वो ये समझने से कासिर थी कि उमर वाकई इतना मुखलिस है जितना वो नज़र आ रहा है, या फिर इसके अंदाजे ठीक हैं। वो उमर को समझ नहीं पा रही थी। उसकी शख्सियत अलीज़ा को बहुत अजीब लगी थी। उसके मूड्स घड़ियों की सुइयों से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बदलते थे। वो जब भी अपने कमरे से निकल के लाउंज में आता तो घर में जैसे ज़िंदगी की एक लहर दौड़ जाती थी। नाना नानों से लेकर मुलाज़मों तक हर कोई इसे पसंद करता था और इसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। इसके पास यकीनन कोई ऐसी हुबी थी जिससे वो दूसरों को अपना गर्विदा बना लेता था। मगर अलीज़ा अभी तक इस बारे में बहुत मोहतात थी। इसे आखिर मुझे परफ्यूम देने की क्या ज़रूरत थी, वो भी सोच रही थी। उसका ख्याल होगा कि मैं गिफ्ट लेकर खुश हो जाऊंगी और बाकी लोगों की तरह वो मुझ पर भी कब्जा कर लेगा। मगर वह उलझन में गिरफ्तार हो गई थी कि गिफ्ट के बारे में क्या सोचे। क्या मैंने इसे गिफ्ट लेकर ठीक किया या फिर ये मेरी गलती थी? वो अभी तक सोचों में गुम थी। बहुत देर तक सोचों में गुम रहने के बाद इसने फैसला किया था। नहीं, मुझे गिफ्ट वापस नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर नानू खफा हो सकती हैं, इसे ख्याल आया था। मगर मैं अब दोबारा इससे कोई गिफ्ट नहीं लूँगी क्योंकि मुझे इससे दोस्ती नहीं करना है, इसने बिलाहिर तय कर लिया। चंद दिनों बाद जब उमर ने इसे एक और परफ्यूम दिया तो वो इनकार ना कर सकी और फिर ये एक रूटीन बन गई थी। वो जब भी घर से बाहर किसी काम के लिए जाता इसके लिए कुछ ना कुछ लाता रहता। बज दफ़ा ये बड़ी मामूली चीज़ें होती थी, मसलन आइसक्रीम का एक कप, एक भुट्टा, च्यूंगम का एक पैकेट, कभी लीटर पैड, कभी नावल, और वो हर बार ये तय करती कि अगली बार इसे कुछ नहीं लेगी, मगर अगली बार खामोशी से इसका गिफ्ट ले लेती। वो उसे हर चीज़ गिफ्ट कहकर ही देता था। अलीज़ा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। आई स्वेयर ऐसा गिफ्ट तुम्हें पहले कभी किसी ने नहीं दिया होगा, बल्कि तुम्हें क्या किसी ने भी किसी को नहीं दिया होगा, वो बाहर से आने पर कहता और वो तजस्स हो जाती। और ये गिफ्ट है एक अदद बुट्टा, और वो कागज़ में लिपटा हुआ एक अदद बुट्टा उसकी तरफ बढ़ा देता। अलीज़ा, आज मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे खास चीज़ लेकर आया हूँ, और ये चीज़ बहुत ही खास लोगों को दी जाती है। अगली बार इसके अल्फाज कुछ और होते, अलीज़ा एक बार फिर दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो जाती। वो अपनी जेब में हाथ डालता और किट कैट का एक पैकेट इसे थमा देता। आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खतरनाक और पुरअसर चीज़ दूंगा। अलीज़ा एक बार फिर अंदाजे लगाने में मसरूफ हो जाती। वो 25-30 रुपये का एक बाल पॉइंट इसे एक मुस्कुराहट के सामने पेश कर देता। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तमाम उम्र तुम्हें याद रहेगा। तुम्हारे साथ रहेगा और तुम सारी उम्र इसको इस्तेमाल करती रहोगी। अलीज़ा फिर पूछने में नाकाम रही और इसके सामने किताब पेश कर दी जाती। इस बार मेरा गिफ्ट सबसे यूनिक है। ये तुम्हें फिट और स्मार्ट रखेगा और तुमको कभी भी डाइटिंग करने इस बार मेरा गिफ्ट सबसे यूनिक है ये तुम्हें फिट और स्मार्ट रखेगा और तुम्हें और तुमको कभी भी डाइटिंग करना नहीं पड़ेगी। च्युइंगम का एक पैकेट इसके सामने रखकर फरमाता, बस तुम हर बार भूख लगने पर इसे मुंह में डाल लेना। वो मज़े से कहकर चला जाता। बाज़ दफ़ा इसे हंसी आ जाती, बाज़ दफ़ा वो उलझ जाती, बाज़ दफ़ा इसे गुस्सा आता, और बाज़ दफ़ा वो उम्र के बारे में सोच में पड़ जाती। इस दिन वो मार्केट से वापसी पर अपने साथ कुछ प्लांट्स लेकर आया था। देखो अलीज़ा, ये प्लांट्स कैसे हैं? वो इन पौधों को अलीज़ा को दिखा रहा था। आजकल वो हर बात में अलीज़ा की राय लेना ज़रूरी समझता था। मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास से गुजर रहा था, वहीं से इन्हें लाया हूँ। अच्छे हैं? अलीज़ा ने एक नज़र इन प्लांट्स को देखा था और फिर इन्हें देखते हुए बड़े आम से अंदाज में तबसरा किया था। वो कुछ मायूस हो गया था। सिर्फ अच्छे हैं? अलीज़ा ने कुछ उलझी हुई नज़रों से इसे देखा था। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? अपनी राय दो कि अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं? उमर ने उसे समझाया। मैं प्लांट्स के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए सही राय देना तो बहुत मुश्किल है। आपको नानों से पूछना चाहिए, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि ये प्लांट्स कैसे हैं, उसने उमर से कहा। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें गार्डनिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका मतलब तो ये है कि तुम्हें नेचर से कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नेचर तो अट्रैक्ट करती है, गार्डनिंग ने उसने जैसे कतई तौर पर उसे बताया था। ये प्लांट्स कहाँ से लाए हो? नानो इसी वक्त लाउंज में आई थी, कज़ाफ़ी स्टेडियम से। आप बताएं कैसे हैं? इसने फ़ौरन नानो से राय लेने की कोशिश की थी। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर कीमत क्या है उनकी? नानो ने फ़ौरन तारीफ़ की थी मगर साथ ही सवाल भी दाग नानो ने फ़ौरन तारीफ़ की थी मगर साथ ही सवाल भी दाग दिया था। उमर ने इंडोर प्लांट्स की कीमत बताई थी। तुम्हें ज़्यादा महंगे दे दिए इन लोगों ने, उनको पता चल गया होगा कि तुम बहुत देर के बाद यहाँ हो, इसीलिए उन्होंने तुमसे दोगुनी कीमत वसूल की है, नानो ने कदरे अफसोस से कहा था। ये कौन सी नई बात है ग्रैनी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये यहाँ का कल्चर है। वो कहते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स, उसने बहुत अजीब से लहजे में कहा था। अलीज़ा ने कुछ यूँ कर इसे देखा, वो अब भी बोल रहा था। यहाँ सब कुछ बहुत ख़राब है, जो 100 रुपये की करप्शन कर सकता है वो 100 रुपये की करता है, और जो 2 रुपये की करप्शन कर सकता है वो 2 रुपये की करता है, वो 2 रुपये की करप्शन करता है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप कुछ सीखते हैं। 1 रुपये की चीज़ 10 में खरीद कर कम अज़ कम ये तो पता चल जाता है कि दूसरा अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। वो पहली बार इस तरह बातें कर रहा था, वरना पहले अलीज़े ने हमेशा इसे सिर्फ टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम के बारे में बोलते सुना था। तुम ज्वाइन करो ना सिविल सर्विस, तो फिर तुम चेंज लाना इन चीज़ों में जिन पर तुम्हें एतराज़ है, नानो ने इससे कहा था। वो एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। आप भी बहुत अजीब बातें करती हैं ग्रैनी, आपका क्या हाल है कि मैं सिविल सर्विस ये सब ठीक करने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ? मुझे सोशल वर्क का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी एक आदमी कोई तब्दीली नहीं ला सकता, मैं बदलना चाहूँ भी तो नहीं बदल सकता। यहाँ हर चीज़ इतनी रोटन और रस्टेड है कि जब तक अगर आप एक चीज़ ठीक करेंगे तो पहले ही वाली इसी हालत में आ जाती है। वैसे ग्रैनी, आपने कभी अपने बेटों को क्यों नहीं कहा? आपके तो सारे बेटे सिविल सर्विस में हैं। मेरी जनरेशन के लिए रिफॉर्म करना हासा मुश्किल काम है, मगर मुझसे पहले की जनरेशन ये काम आसानी से कर सकती थी। तब लोग इतने बिगड़े हुए नहीं थे, उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान था। वो अब संजीदा हो गया था। जब तुम्हारे पापा और अंकल्स ने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी तो मैंने उन्हें भी बहुत नसीहतें की थी। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि तुम्हारे दादा ने भी। मैं आज तक हैरान हूँ कि वो चारों इन सारी नसीहतों को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता इन चारों को ज़िंदगी में क्या चाहिए था। मैंने और मास ने उन्हें दुनिया की हर चीज़ दी थी। हमारे पास वो सब कुछ था जो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी था। मेरा ख्याल था कि इन चारों को इन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मगर मेरा ख्याल गलत था। इन चारों को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ एक ही तादाद में नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में चाहिए थी। जब जहन में यह सब कुछ हो तो नसीहत उल्टा असर करती है। इनके साथ भी यही हुआ है। मैंने जितना इन्हें समझाने की कोशिश की, वो उमर ने उनकी बात सुनते सुनते बात काटी। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि ग्रैनी, आपकी बातों में असर नहीं था, या फिर शायद आपके समझाने का तरीका गलत था। वजह जो भी हो, बहरहाल आप तो सब कुछ जैसा हो रहा है होने दें। चीज़ों का बदलना नामुमकिन है, और नामुमकिन काम करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत होती है वैसे लोग हमारी कौम में नहीं हैं। मैं तो फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद डैडी की तरह ऐश करना चाहता हूँ, वैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसी वो गुजार रहे हैं। देखें बात कहाँ से कहाँ चली गई। मैं आपसे प्लांट्स के बारे में पूछ रहा था। उसने बात का मौजू बदल दिया था। अलीज़ा बड़ी राजदारी से ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। मैं ज़रा इन प्लांट्स को लगवा लूँ ग्रैनी, आप चलेंगी मेरे साथ बाहर लॉन में? उसने दादू को इनवाइट किया था। नहीं भाई, मुझे बाहर नहीं जाना, कुछ काम करने हैं मुझे। तुम खुद ही माली के साथ जाकर ये प्लांट्स लगवा लो, नानों ने इससे कहा। मैं इसलिए आपको साथ ले जाना चाहता था ताकि आप लॉन में जगह सेलेक्ट कर लें इन प्लांट्स के लिए। बाद में आपको कोई एतराज़ ना हो कि मैंने गलत जगह पर प्लांट्स क्यों लगवा दिए। नहीं माली अच्छा है, वो तुम्हें बता देगा कि ये कहाँ ठीक लग रहे हैं और कहाँ नहीं। तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी तुम जहाँ भी प्लांट्स लगवाओगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लगवाए हुए प्लांट्स होंगे। उमर ने नानों की बात पर मुस्कुरा कर इन्हें देखा था। अलीज़ा ने नानों की आंखों की चमक को कुछ और गहरे हो अलीज़ा ने नानों की आंखों की चमक को कुछ और गहरा होते देखा। इसे इन दोनों की मुस्कुराहटें बुरी लगी थी। चलो अलीज़ा, हम दोनों प्लांट्स लगवाते हैं, उमर ने खड़े होते हुए इसे ऑफर की थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे गार्डनिंग से कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर आप मुझे साथ ले जाकर क्या करेंगे? अलीज़ा ने संजीदगी से इसे कहा था। तुम आओ तो दिलचस्पी भी पैदा हो ही जाएगी, मैं इसीलिए तो तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ, उमर ने बड़े हशाश विशाश लहजे में उसे कहा था। नहीं, मैंने आपसे कहा, अलीज़ा ने एक बार फिर कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर नानों ने इसकी बात काट दी थी। कम ऑन अलीज़ा, जब वो बार बार तुमसे कह रहा है तो इतना नहरा करने की क्या ज़रूरत है, चली जाओ उसके साथ। अलीज़ा ने नानों के चेहरे को देखा था, वह नागवारी के तासुरत नुमायाँ थे। वो खामोशी से खड़ी हो गए। उमर मुलाजिम को पौधे उठाने के लिए कह रहा था। वो मुझे दिल के साथ बाहर लॉन में आ गई थी। कुछ देर बाद उमर भी लॉन में निकल आया था। वो बेमकसद लॉन में चक्कर लगाने लगी थी। उमर माली के साथ मिलकर लॉन में पौधे लगवा रहा था। गाहे बगाहे वो अलीज़ा से भी राय ले लेता, वो हूँ हाँ में जवाब देकर इसके पास से हट जाती। वो माली से पौधे लगवाते हुए हासे गौर से उसके चक्करों को देखता और कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा। तकरीबन एक घंटे में माली ने सारे पौधे लगा दिए थे। उमर ने वापस अंदर जाने की बजाय अपने कमरे में रखे हुए इंडोर प्लांट्स भी बाहर ही मंगवा लिए थे। अलीज़ा ने बेजारी से मुलाजिम को इंडोर प्लांट्स को बाहर लाते देखा। इन प्लांट्स की कटिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर कल तक इन्हें यही लॉन में ही रहने दूंगा ताकि इन्हें कुछ रोशनी वगैरह मिल जाए। हेलो अलीज़ा, तुम भी इन प्लांट्स को प्रन करना शुरू कर दो, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने एलिजा को बुलाकर इससे कैंची थमा दी थी। वो बेदिली से पौधों की कटिंग करने लगी। उमर बड़ी दिलजमई और महारत से इन पौधों की तराश राश कर रहा था। साथ साथ वो हर पौधे के बारे में उसे कुछ न कुछ बता रहा था। वो गार्डिना की कटिंग कर रही थी कि उसने उमर को कहते हुए सुना, ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है। वो हाथ रोककर उसे देखने लगी थी। वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, वो इस प्लांट को देख रहा था। मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, मगर जिन चीज़ों में है उनसे बहुत दिलचस्पी है। ये सारे प्लांट्स भी इन चीज़ों में शामिल हैं। पता है लीज़ा, ये प्लांट्स बार दफ़ा मुझे अपने फ्रेंड्स की तरह लगते हैं। मुझे महसूस होता है ये मेरी आवाज़ सुनते हैं, शायद जवाब भी देते हैं। मैं बहुत छोटा था जब मुझे इनडोर प्लांट्स लगाने का शौक पैदा हो गया था। शायद मैं 7 या 8 साल का था जब अपने हाथों से एक प्लांट लगाया था। बाद में तो जैसे आदत सी हो गई। ये कमरे में हों तो मुझे ऐसा लगता है कमरे में कोई और ज़िंदा चीज़ मौजूद है जो सांस भी लेती है और शायद मेरे वजूद को भी महसूस कर लेती है। लीज़ा को इस वक्त यूं लगा जैसे इसका दिमाग ख़राब है। उसने कुछ देर हैरानी से इसका चेहरा देखा था। तुम सोच रही होगी मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। उमर ने इसका जहन पढ़ लिया था, वो गड़बड़ा गई थी। तुम अगर ऐसा सोच रही हो तो गलत नहीं सोच रही। हो सकता है मेरा दिमाग वाकई ख़राब हो गया हो, मगर मैं जिस कल्चर जिस सोसाइटी से आया हूँ वहाँ सबके दिमाग ऐसे ही होते हैं। जब इंसानों से आपकी मोहब्बत खत्म हो जाए तो फिर चीज़ों से मोहब्बत शुरू हो जाती है। इसलिए बाहर लोगों को जानवरों से मोहब्बत होती है, प्लांट से मोहब्बत होती है, पेंटिंग से मोहब्बत होती है, म्यूज़ियम आर्ट गैलरीज और थिएटर से मोहब्बत होती है। मैं भी इसी माहौल में पैदा हुआ हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ। मुझे भी इंसानों की बजाय चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत है। ठंडे मुल्क में रहते रहते बाज़ दफ़ा मुझे लगता है मैं भी कोल्ड ब्लडेड जानवर बन गया हूँ। वो बात करते करते अचानक कहका लगा कर हंसने लगा था। है ना मज़े की थेरी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, उसने अलीज़ा से पूछा था। मगर अलीज़ा को यूँ महसूस हुआ कि जैसे इसे इसकी राय की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो खुद ही अपने जुमले को इंजॉय कर रहा था। संजीदा गुफ्तगू करते करते वो अचानक मजाक करने लगा था। वो कुछ देर गौर से इसे देखती रही जैसे समझने की कोशिश कर रही हो, और उमर जहांगीर से ये बात छुपी नहीं रह सकी थी। वो कुछ बोलते बोलते बात बदल गया था। बड़ी महारत के साथ उसने सब कुछ कैमोफ्लाज कर दिया था। और ये काम करने में कोई इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। वाइट कलर मुझ पर बहुत अच्छा लगता है ना लीज़ा, उसने एकदम सर उठाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेखौफी और बेतकल्फी से पूछा था। और खासतौर पर व्हाट्सएप की शर्ट्स, लीज़ा इसके जो सवाल से ज्यादा मुस्कुराहट से गड़बड़ाई थी। ऐसे सवाल की क्या तुक बनती है, उसने उमर जहांगीर के चेहरे से नजर हटाते हुए कुछ छींप कर कहा था। मुझे क्या पता कौन सा कलर अच्छा लगता है, वो हाथ से सामने रखे हुए प्लांट्स को संवारने लगी थी। ओह, मैंने सोचा शायद ये कलर बहुत सूट कर रहा है, इसलिए तुम इतनी देर से और इतने गौर से मेरा चेहरा देख रही हो। अलीज़ा ने उमर के चेहरे को देखा था जिस पर मायूसी छाई हुई थी। उसे इन तासुरात के असली या नकली होने को शनाख्त करने में देर नहीं लगी थी। वह अब फिर इत्मीनान के साथ प्लांट्स के साथ मसरूफ था। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आपको गौर से देखूं, मैं आपको सिर्फ देख रही थी, उसने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ वजाहत की थी। और काफ़ी देर से भी तो देख रही थी, देर से इसलिए देख रही थी क्योंकि आप बात कर रहे थे, उसने जैसे एहतजाजन कहा था। अच्छा सॉरी, मुझे ऐसी गलतफहमी हो गई। असल में लियो हूँ ना, इसलिए मुझे ऐसी गलतफहमी अक्सर होती ही रहती हैं, उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में मासरत करते हुए वजाहत की थी। मगर इस बार अलीज़ा ने इसे नहीं देखा था। वो नागवारी से अपने सामने पड़े हुए प्लांट्स को देखती रही थी। वो खामोश हो गया था। उसने कैंची उठाकर उसे कनखियों से देखा। वो कदाल के साथ मट्टी नरम कर रहा था। अलीज़ा ने कपकपाते हुए हाथों के साथ अपने सामने पड़े हुए पौधे की एक बड़ी शाख काट दी थी। सर उठाकर उसने एक बार फिर उमर को देखा था और धक से रह गई थी। वो उसी की तरफ मुतवज्जो था। बहुत गौर से उसे देखते हुए उसका अपना चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। वो अंदाज़ा नहीं कर पाई वो किस वक्त इसकी तरफ कब मुतवज्जो हुआ था और क्या उसने देख लिया था कि वो सॉरी, पता नहीं ये कैसे कट गई, मैं तो बड़ी एहतियात से इन्हें काट रही थी, उसने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा था। अपनी बात के जवाब में उसने उमर जहांगीर के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट उभरते देखी थी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, तुम देखना अब ये बहुत तेजी से बढ़ेगा और पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मुझसे जब भी कोई प्लांट इस तरह करता है तो वो पहले से ज्यादा अच्छा हो जाता है। उसने अजीब सी मंतक पेश की थी। वो इसकी इस हरकत से बिल्कुल मुतासर नहीं हुआ था। वो दमसादे होंठ पीछे जब चंद लम्हों तक देखती रही और फिर वो एक बार फिर प्लांट्स की तरह मुतवज्जो हो चुका था। फिर एकदम उठकर अंदर भागती चली गई थी। उमर जहांगीर ने पुरसकून अंदाज में सर उठाकर उसे भागते हुए अंदर जाते हुए देखा था। फिर उसने उस पौधे की कटी हुई शाख को उठा लिया था। लाउंज में दाखिल होने से पहले उसने मुड़कर एक बार पीछे देखा था तो उमर पौधे की इस कटी हुई शाख को उठा रहा था। वो गैर इरादी तौर से दरवाजे पर रुक गई। वो कुछ देर तक इस शाख पर हाथ फेरता रहा था। वो दूर से इसके तासुरात नहीं देख पाई थी मगर दिलचस्पी से इसे देखती रही। चंद लम्हों के बाद उसने उससे उस शाख को पौधे के पार्ट में गाड़ते देखा था। वो कुछ हैरान होती हुई अंदर आ गई थी।
अभी आप मुलाहिजा कर रहे थे नावल अमर बेल, लिटरेरिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर द